ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ स्वास्थ्य परियोजना संबंधी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। दिल्ली विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय ने अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उपायों पर कांवड़ समितियों के साथ चर्चा की और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संबंध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने एक बयान में कहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड सहित 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। ये परियोजनाएं बेवजह देरी और लागत वृद्धि में फंसी हुई हैं, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय गबन का संकेत देती हैं। भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने कहा है कि शहर भर में विभिन्न अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स और आईसीयू के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी अनियमितताएं, देरी और धन की महत्वपूर्ण हेराफेरी पाई गई है, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय और ब्रिटेन स्थित लीड्स विश्वविद्यालय ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों विश्वविद्यालयों में विनिमय गतिशीलता और अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर शीरर वेस्ट ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस मौके पर दोनों विश्वविद्यालयों के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि इस साझेदारी से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ट्विनिंग प्रोग्राम की दिशा में एक अहम कदम है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए भागीदार विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर लीड्स विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शीरर वेस्ट ने कहा कि कई परास्नातक और पीएचडी विद्यार्थी भारत में पढ़ाई करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता ऐसे विद्यार्थियों को नई संभावनाएं देगा और भारत तथा ब्रिटेन के शैक्षणिक रिश्ते और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली पुलिस ने 50,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त करके उन्हें नष्ट कर दिया है। पुलिस ने वर्ष 2025 में अब तक इस कारोबार में संलिप्त 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी निषेध दिवस पर आयोजित एक जन जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार, पुलिस और समाज सभी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का सफल समापन की घोषणा की। ये अभियान इस महीने की 12 तारीख से 26 तारीख तक चलाया गया। इस अभियान में लगभग 1,500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने 52 किलोग्राम की नशीली दवाइयां भी नष्ट की। पुलिस ने बताया कि इन मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3,200 करोड़ रुपए से अधिक है। दिल्ली पुलिस का यह अभियान एक व्यापक मुहिम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 जून को सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इस जन जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस लोगों को आत्मचिंतन करने का अवसर देता है और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि आज का यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान से प्रेरित है और दिल्ली सरकार इस राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने यह संकल्प रखा है कि वर्ष 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और दिल्ली सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार नशे के खिलाफ सिर्फ कार्यक्रम नहीं एक जन आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को बचाने के लिए यह लड़ाई हर गली हर मोहल्ले हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रम तैयार कर रही है।
दिल्ली का सपना दिल्ली सरकार ले हुए है, वो विकसित दिल्ली तभी हो सकती है और ये देश पूरा विश्वगुरु तब बन सकता है जब नशा कहीं ना कहीं युवाओं से और समाज से दूर रहेगा। तो उसके रूप में हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, बहुत सारे अवेयर कैंप्स के माध्यम से, हर वर्ग में जाके, एजुकेशन से लेके हर सिस्टम में जाकर नशे को मुक्त करने का जो अभियान है वो चला जा रहा है।
मादक पदार्थ कई दशकों से एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, परिवारों को तोड़ रही है और समुदायों को कमजोर कर रही है। इसका प्रभाव नशे की लत से कहीं आगे तक है। यह स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाता है। इस बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक निर्णायक कदम उठाया और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस घोषित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन के साथ आदर्श।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने आज मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मादक पदार्थ के दुष्प्रभावों और एक स्वस्थ व्यसन मुक्त जीवन जीने के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले बैनर और नारे के साथ मार्च किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राजभाषा विभाग की गौरवपूर्ण यात्रा और योगदान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में राजभाषा विभाग ने हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के संवर्धन और राष्ट्र जागरण में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जन जन की बोली है और भारत भूमि की पहचान है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कांवड़ समितियों के साथ संवाद कर आगामी कांवड़ यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धा से परिपूर्ण बनाने पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूरी दिल्ली में कांवड़ यात्रा बड़े उत्साह से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों के स्वागत में पूरी तरह से लगी रहेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सभी कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या न हो।
इस बार सरकार के द्वारा दी हुई एक एक मदद का एक एक रुपया स्वयं सीधा समिति तक पहुंचेगा। समितियां अपनी बेहतर से बेहतर सुविधाएं करेगी और सरकार प्रशासन को दुरुस्त करके उनकी स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक हर काम को मुहैया करवाएगी।
इस दौरान दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि कांवड़ यात्रा में किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा और कांवड़ियों का सत्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ शिविरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कांवड़ सेवा समिति सीधे विशेष कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे इनके साथ काम करेगी। भव्य स्वागत द्वार दिल्ली में मनाए जाएंगे, शानदार स्वागत होगा भोले के भक्तों का, कांवड़ियों का, और सभी मूलभूत सुविधाएं कांवड़ शिविरों में सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी।
दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने आज दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में सभी विभागों और संबंधित पक्षों के साथ मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों का प्रसार आने वाले 2 महीने में अधिक होता है, इसलिए निगम को मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के प्रयास अभी से आरंभ करने होंगे। उन्होंने कहा कि जनता को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपायों के बारे में जागरूक करना, दफ्तरों से कबाड़ हटाना और सभी विभागों की मदद करने जैसे कार्य करने होंगे। दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र के नबी करीम इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और क्षेत्र की जल निकासी तथा जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्षों से उपेक्षित नागरिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान और सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष विकास का भरोसा दिलाया। श्री वर्मा ने घोषणा की कि इस इलाके की भड़बूजे वाली गली जैसे तंग रिहायशी इलाकों में सीवर लाइन को सुधारने का कार्य तुरंत किया जाएगा। जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या पृष्ठभूमि को लेकर भेदभाव नहीं करेगी और सभी को समान अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी।
लोगों ने अपने मनमानी से कनेक्शन जोड़े हुए हैं या जहाँ पर भी धर्म संस्थानों में दे रखे हैं वो सबको ठीक करेंगे और सबको बराबरी से पानी मिले, सबका हक है पानी के ऊपर, केवल एक धर्म का अधिकार नहीं है, इसलिए पानी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ये सभी का अधिकार है, सभी को मिलेगा। इस बात को हम देखने आए थे, जो यहाँ पर गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे, बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाइए।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरों में हो रहे भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था को देखते हुए आज सराय कालेखां की पार्किंग में चलाए जा रहे 5 रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सूद को रैन बसेरों में कई तरह की खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में चल रहे भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की आवश्यकता होने पर अधिकारी और नेताओं पर सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी।
लगातार हमारे पास लिखित शिकायतें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर, उनके मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इन रैन बसेरों में एनजीओ के माध्यम से हजारों लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में हेराफेरी की जा रही है। आज हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कितना भी ताकतवर नेता हो, कितना भी ताकतवर अधिकारी हो, जिसने इन गरीबों के पैसे में हेराफेरी की है उसे जेल जाना पड़ेगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और XM-4 मिशन टीम को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक डॉकिंग करने के लिए बधाई दी है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ISS के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और 14 दिन के प्रवास के लिए कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दुनिया उत्साह और उम्मीद के साथ उन्हें देख रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर पूरी छूट जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करना स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सर गंगाराम कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर सेंटर का अवलोकन किया और मरीजों से बातचीत की। सीबीआई ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे खच्चर बैंक खातों के संबंध में 5 राज्यों में 42 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी शुरू की है। दिल्ली में आज धूप के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर सकता है। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ स्वास्थ्य परियोजना संबंधी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। दिल्ली विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय ने अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उपायों पर कांवड़ समितियों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।